नारायण 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 राम 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 राम। भगवद गीता में आता है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही है गुरु नंदना, निश्चयात् बुद्धि एक होती है। बहुशाखा अनंतता से बुद्धि अव्यवसाय नाम, जो अव्यवसायी है जिसका कोई निर्णय नहीं है उस बहुत शाखा वाली बहुत बुद्धियां होती है। तो महिमा वो एक बुद्धि वाले की है, बहुत शाखा वाले की नहीं है, वो सिद्ध नहीं कर सकते काम। एक साथ है सब सत है और सब साथ है सब जाए सिद्धांत है। तो पारमार्थिक उन्नति एक निष्ठा से होती है, एक निष्ठा पक्की, और पक्की निष्ठा इधर उधर नहीं होता, तब होता है। जैसे एकादशी के व्रत कर लिया, एक दाना खा जाते एकादशी भाग गई, वो पेट तो भरा नहीं, कुछ आश्रय आया नहीं, आधार कुछ मिला ही नहीं, एकादशी खत्म हो गई। इस तरह से अनन्य भाव में अन्य का आश्रय कुछ भी दे दिया जाए तो वो ठीक नहीं है, वो सिद्धि नहीं होगी। अनन्य भाव से जैसे एक दाना खा लेने एकादशी भाग गई, अरे फायदा कुछ नहीं हुआ, पेट कुछ भरा ही नहीं, परंतु बस गया। इसी तरह से दो तरह की एक निष्ठा कहते हैं। आजकल जैसे श्री कृष्ण शरण मम कह दिया तो राम राम नहीं लेंगे, कृष्ण कृष्ण ही कहेंगे, ये एक निष्ठा आजकल प्रचलित है, ये करते हैं लोग। मैं इसको बड़ा ठीक मानता हूँ, वो भी ठीक है उन्हें कहने वाले, वास्तव में मेरे जस्ती नहीं है, राम कृष्ण कहते तो कोई दोष की बात नहीं मानता मैं। एक निष्ठा वो है कि संसार की रुचि मिटा देना, पारमार्थिक रुचि जागता, केवल पारमार्थिक काम है। स्वास्थ्य बिगड़े तो सुधरे तो सुख पावे तो दुख पावे तो भोग मिले न मिले, अपने सुंदर मिले न मिले, इसकी परवाह नहीं करनी संसार की। एक पारमार्थिक उन्नति अपने को करनी है। अगर भाई बहन उचित समझो आप तो एक मन में विचार कर लो कि अपने तो पारमार्थिक उन्नति ही करना है, इसकी बहुत महिमा। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही होती है, बहुत शाखा अनंत बुद्धि अव्यवसाय, अव्यवसायी है जिनका निश्चय नहीं है, बहुत शाखा अनंत बुद्धियां होती है। तो एक ही साथ है सब साथ है सब साथ है सब जाए, फिर एक को रहने हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे एक ग्रंथ हो, अब तीसरी बात बता दूंगे, एक ग्रंथ हो, एक माला हो, एक ही आसन हो, एक ही भक्त हो, उसी भक्त को किया जाए तो उससे बड़ी लाभ की बात है, सिद्धि होगी। ऐसे ही सत्संग है, उसमें भी एक विचित्र बात है। एक निष्ठा पहले तो श्री कृष्ण शरण राम भी नहीं लेना, एक निष्ठा। दूसरी निष्ठा के संसार की तरफ ध्यान न देकर केवल पारमार्थिक बात करनी, दूसरी निष्ठा। तीसरी बात है कि एक नाम एक ही जप एक ही संग एक ही सिद्धांत माने तो ठीक होगा, अगर इन्हें बदलता रहेगा तो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, जल्दी सिद्धि नहीं होगी। मेरे बहुत बदला है, मेरे जीवन में मैंने बहुत बातें बदली है, वो अब नहीं बदले उतनी बढ़िया है, फिर मेरे तो बदलना हुआ है भाई, हुआ है। पर जहां फिर विचार कर लिया फिर वो मेरे को भगवान ने रक्षा करी, नहीं बदला फिर, फिर उसने नहीं बदला। पहले तो जन्म स्थान में रहा, फिर साधुओं के साथ रहा, फिर बाद पढ़ाई में रहा, फिर मैं सेठ जी के पास आया। तो सेठ जी के पास आने के बाद में मैं नहीं बदला हूं, सिद्धांत पर पक्का रहा आदमी। किसी संत के किसी महात्मा के किसी के पास जाने की कभी इच्छा नहीं हुई। ऋषिकेश में रहता हूँ परंतु नीलकंठ भी नहीं गया, नदी की है या बद्रीनाथ नहीं गया, जरूरत नहीं है। ऐसे करने से सिद्धि होती है और जगह जगह भटकने से सिद्धि नहीं होती, वो व्रत भंग हो जाता है। वो कोई ठीक अच्छी बात है, जैसे अनेक चीजों के सेवन करने से अच्छी बात है, तरह तरह का माल मिलेगा, तरह तरह का चखेंगे, पर स्वास्थ्य बढ़िया नहीं होगा, जिह्वा के लोलुपता के कारण। ऐसे ही संग करना है और अपने शिक्षा लेना है तो एक सिद्धांत पकड़ो, एक सिद्धांत पकड़ करो सिद्धि हो जाएगी, और एक सिद्धांत नहीं पकड़ोगा तो वह सिद्धि जल्दी नहीं होगी। एक बात और बताऊं कि परमात्मा में लगे रहो, वो लगना बहुत अच्छा, उसमें कोई बदल जाए, माला ही बदल गई, जमीन बदल गया, संग भी बदल गया, पर किसी साथ रहे फिर किसी साथ रहेगा तो हानि नहीं होगी। परमात्मा में लगे रहोगे, संसार में नहीं फंसोगे तो हानि नहीं होगी, पर लाभ जल्दी नहीं होगा। मेरे भाव को समझिए कि नहीं समझे और स्पष्ट कर रहे। मानो पहली अनन्यता तो है नाशवान की तरफ लगकर अविनाशी की तरफ लगना, अविनाशी तत्व को प्राप्त करना, ये एक निष्ठा। अब अविनाशी की प्राप्ति करने में उपासना जैसे कृष्ण भगवान है, राम जी है, विष्णु आदि, इनके एक एक निष्ठा होनी, और इसमें भी फिर अगाड़ी चल कर जो सत्संग करना है, कोई महात्मा के पास लेना, जिसे लाभ उठाना है, तो लाभ उठाना हो तो एक निष्ठा से होगा, जगत जी के भटकने से वो लाभ नहीं होगा, परंतु लगे रहे हो तो नुकसान नहीं होगा। संसार की तरफ न फंस करके परमात्मा की तरफ लगे होगे तो नुकसान नहीं होगा, और परमात्मा की तरफ न लग करके संसार के भोगों में लग गए तो भैया पतन है, फिर निष्ठा नहीं है। परंतु सत्संग में करते हुए भी एक कोई संत है, एक महात्मा, एक सिद्धांत है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अत्यंत भेदा भेद है, कई भेद है उनमें, उपासना में कई तरह का भेद है, तो कई तरह का भेद उसमें भी मनुष्य एक निर्णय करने बड़ी मुश्किल होती है, मेरी बीती की बात है। तो एक व्यक्ति है कोई, जिसमें हमने देख लिया कि सगुण निर्गुण साकार निराकार परमात्म तत्व द्वैत अद्वैत आदि जानने वाले अपनी दृष्टि से ये विशेष जानकार है, तो फिर वो पल्ला पकड़ लेना उसका, अपन जस जाए तो नहीं, जैसे तो कोई जरूरत नहीं किसी की शिष्य आदि बनाने के, मैं तो पक्ष में भी नहीं हूँ, इस बात से कहूँ ही नहीं कि शिष्य बन जाओ, मैं पक्ष में नहीं हूँ। मैं शिष्य बनने से एक बंधन होता है, फिर वहीं फंस जाएगा और असली तत्व मिलना मुश्किल हो जाएगा, वहीं फंस जाएगा, इस बात नहीं कहता। परंतु पारमार्थिक रुचि है, उसमें भी एक ही सिद्धांत हुए, एक ही संग हुए, एक ही पुस्तक हुए, एक ही हुए, तो उसमें जो सिद्धि होगी जगह जगह भटकने से नहीं होगी। और साथ ये भी मैं बात कहता हूँ कि केवल पारमार्थ लगा रहे तो नुकसान नहीं है, पर सिद्धि नहीं होगी जल्दी। एक निष्ठा हुए, एक ही ग्रंथ हुए, एक ही संत महात्मा हुए, एक ही मान्यता हुए, वो एक हो तो बहुत जल्दी सिद्धि करेगी। मैंने पुस्तकों में पढ़ी है, संतों से बातें सुनी है, ऐसे एक निष्ठ हो जाओ एकदम, वह निष्ठ होने में आपकी बिल्कुल स्वतंत्रता है, कोई बंधन नहीं कि अमुक जगह जाओ। हमारे ऐसा होता है कि भाई मेरे गुरु जी को मानने से कल्याण होगा, तो तुम जाओ तो जगह नहीं होगा, ये मेरे जस्ती नहीं है पूरी। आप सोच लो, जैसे मैंने कही अभी सगुण निर्गुण साकार निराकार ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान अष्टांग योग कोई योग जिनमें हम उसको पकड़े कि जिसके पास में ये सब चीजें है जिसे संदेह नहीं है, ऐसे को पकड़ना चाहिए। मैंने ऐसा किया है, कई उम्र में ऐसा किया है मैंने, ग्रंथों पर मेरी श्रद्धा नहीं रही है जी भाई। अब भक्ति को जो भक्ति में महिमा, ज्ञान की निंदा, अगर ज्ञान पर में जाओ तो ज्ञान की महिमा और भक्ति की निंदा, ये हमारे सस्ती नहीं है। तो फिर देखा भाई ज्ञान में भक्ति में योग में इनमें सब एकदम ठीक जानने वाला हो तो उनका संग मैंने कहा जहां तक किया है और देखा है वो ठीक रहेगा। ऐसा होने पर फिर मेरा मन विचलित नहीं हुआ है। विचलित दो तरह का होता है, एक तो किसी की तरफ जाया जाए, एक जहां है उनसे हट जाए, दो होती है। तो किसी की तरफ जाने की तो मन में हुई नहीं कभी, परंतु हटने की मन में आई, बहुत विचित्र प्रतिकूलता ही सब, परंतु उसमें भी यही कहा कि भाई ऐसी चीज मिलेगी नहीं, अब दुख सह लो, कष्ट सह लो, तिरस्कार सह लो, अपमान सह लो, निंदा सह लो, परंतु ऐसी चीज मिलेगी नहीं और देखे। इसने मेरी बहुत रक्षा करी है, बहुत रक्षा करी, मैं विचलित नहीं हुआ। प्रतिकूलता से एक विचलित होता है, एक अनुकूलता में। दो बात कही है भगवान ने कि यंग परम लाभ मैंने तेना था, जिस लाभ के मानने के पर उससे बढ़कर लाभ नहीं है। और यशमन स्थित दुख है न गुणा भी बेचारे थे, दुख से विचलित होता है और लोभ से विचलित होता है, दो चीज है लोभ विचलित होने वाली। हम यहाँ बैठे बड़े हम तकलीफ बहुत है तो छोड़ो इसको, आप मिटे एक आ होती है, एक यहाँ लाभ होता है उससे वहां लाभ ज्यादा होगा, ये लोभ होता है, ये दो चीज विचलित करने वाली है। तो दुख आ जाए संकट आ जाए तो उसे जहां तक बने नहीं छोड़ना चाहिए, दुख से रहना है, मेरे काम पड़ा है, हुआ है, जीवन बीता है, और किसी और के पास जाकर वहां के लाभ ले ले गए ऐसे मेरे भटकाऊ, मैं बहुत भटकाऊ देखा हूं, मेरे जितना भटकने वाला आपने कोई नहीं दिखता, मेरे को कुछ छिपा हुआ है तो पता नहीं, मैं जितना भटका हूँ भ्रमण किया है इतना भटकने वाला मेरे साधुओं में गृहस्थियों में दिखता नहीं है, परंतु वो कोई मैं इंसान नहीं भटका कि मैं खोज करूं कौन महात्मा अच्छा है, ये खोज नहीं करी है। मेरे को एक जगह जच गई कि ये यहाँ ठीक है सब तरह से, फिर वहां से विचलित नहीं हुआ मैं। अब लाभ लेने के लिए जाऊं, अब आपको बता दिया ना नीलकंठ भी नहीं गया हूं, अच्छा 7 मील है, भक्त नहीं मिला, समय नहीं मिला, मन में नहीं आई ऐसी बात नहीं, मन में तो आई कि दर्शन करिया मैं, परंतु समय नहीं मिला, और नहीं जाने से कोई कमी नहीं होगी मेरे, ये तो मेरी जची हुई है कि नहीं जाने से कोई कमी हो जाएगी, दर्शन करिया हुआ ऐसी आई मन में, परंतु समय नहीं मिला ऐसी आई नहीं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। फिर एक है डाबर डाबर डबकता बलान कैसी को है, हंसा सरोवर सरोवर न छोड़िए, समुद्र मत छोड़ो, जो जल खारा हुए डाबर डाबर भटकता बलोन कैसी को हुए, तो जगह जगह खाड़ियों में जाता रहो देखता रहो तुम्हारी इज्जत नहीं होगी, समुद्र मिल गया अब क्या जरूरत है। अमर संतों की वाणी माता है, एक हदियार एक बेहदिया, मारवाड़ी भाषा सही थी, एक तो हद वाला बात है एक बेहद वाला है, तो बेहद वाला मिल जाए तो हजिए में नहीं जाना चाहिए। रामदास जी वाणी में बेहद को अंग एक ग्रंथ है, जो अंग अंग कहते हैं ना ये ग्रंथ है, उसमें हजिया बेहदिया बताया है, हजिया गुरु को छोड़कर बेहदिया को ले हो, अरे बेहदिया मिल जाए फिर जरूर जरूर कहीं जरूरत नहीं है, हजिया मिले बेहदिया मिले तो बेहद मानो, जिसमें हद ही नहीं है इतना विलक्षण पास है वो मिल जाए तो हजिया में क्यों जाए, वो सब मिल जाए चीजें क्यों जाओ भाई, तो अपन ऐसे संतोष हो जाना चाहिए, और बेहद जाने छोड़ोगा फिर पता नहीं लगेगा, पहले तो वो उसका खाता खाता ही रहेगा जहां तक गोता खाएगा ही, ये बात है। तो एक निष्ठ होकर के आप परमात्मा में लग जाओ, ये एक मन में आई बात, अब ठीक हो गया ना, अब संकल्प फिर पूछो, आपने क्या खुलासा कर दिया थोड़ा, इतने में नहीं हुआ तो फिर पूछो, फिर कह दूंगा मैं, तो कहना मेरे को बहुत आता है, कहने लगता हूँ तो कुछ एक विशेष कृपा है मेरे पर भगवान की और गुरु महाराज की, बहुत विशेष कृपा है, उससे बहुत विलक्षण बात है, मेरे को खुद को आज तक आवे ऐसी बातें निकल जाती है मेरे से, मैं जानते ही नहीं अभी कहां से आ गई है, ऐसी कृपा से बात होती है। तो ऐसी कृपा प्राप्त करना हो तो एक निष्ठ होने से होगा, वो एक निष्ठ होने से फायदा होगा, विशेष लाभ होगा, तो नहीं तो भटकते रहो, मन भटकने ही को राजी, मन भटकने में आजकल लोगों में भटकने की एक आदत है, एक जगह टिकेगा नहीं तो लाभ नहीं उठाएगा, और क्या जैसी मर्जी ऐसे करो। माम एकम शरणम ब्रज, कल ये प्रसंग चला था शरणागति, तो मेरे को अच्छी लगती है, कल यही विचार किया कि दोपहर का संग अब आज ही है, अब आज तो नहीं है, कल ही था वो, तो एक बढ़िया बात बता दें, ऐसे मन में आया तो बढ़िया गीता की सार बात, अंत में सर्व गुह्यतम भूयस्नु ये परमम बचा सर्व गुह्यतम, तो उस शरणागति है। आज ये एक निष्ठा वाली बात आई, ये पूछा मेरे को क्या बात बताओ कोई, तो बात ये है भाई, ऐसा सुना है कि आग लग जाए चित्त में, एक लग जाए तो आग लगेगी उसी से, एक उत्कंठा लग जाए एक तो एक से एक जगह रहने से लगेगी, भटकने से नहीं लगेगी, तो एक जगह रहे आग लग जाए रहा नहीं जाए उसके बिना, तो ये एक होने से होगी, कभी किसी को कभी किसी से नहीं होगी। एक निष्ठा की बड़ी भारी आवश्यकता है। गीता में सुलभ शब्द एक बार आता है, मैं कहाँ आता है, अनन्य चेता सत्संग यो मांस में से तीन बात है, अनन्य चेता सबसे पहले तो अनन्य चेत हो जाए, अनेक जगह भटकने की जरूरत नहीं, सबसे पहले एक नंबर अनन्य चेता और सततम और नित्य सा तीन पद है। अनन्य चेता तो अपनी निष्ठा एक हो और सततम मानो निरंतर, निरंतर क्या जिस दिन मालूम हो उसे लेकर मरने तक, और नित्य सर क्या है कि नींद खुले तब से नींद आ जाए तब तक, नींद खुले जाके तब से लेकर नींद न आ जाए तब तक, और जिस दिन मालूम हो जाए उस दिन से लेकर मरने तक, यह है सततम। अनन्य चेता सततम यो मांग समृति नित्य स रोजाना हजार हमेश तस्याहम सुलभ, भगवान के उसके लिए मैं सुलभ हूं, और इधर उधर होगा तो उसके लिए भगवान सुलभ नहीं है, लगा रहे तो फायदा है, संसार में जाएगा फिर खाने में चला जाएगा, फिर तो भाई कोई रक्षा करने वाला कौन मिलेगा, ये तो संसार समुद्र है बस डूबते रहो चलाते रहो। तो एक भगवान के शरण हो जाना, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रते, एक भगवान का आश्रय, उस भगवान के शरण होने पर बहुत मौज है, आनंद ही आनंद है, कोई में इतनी विलक्षणता है कि भगवान को आप हृदय से मत छोड़ो, उसको भरोसा रखो, फिर आपके जाने की मन में ही नहीं आएगी, वहां जाए वहां सुने उससे पूछे उससे पूछे। हमारे गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों को जैसे कल कहा ये मीरा भाई का स्वरूप है, मीरा भाई का स्वरूप है, ये अनन्य भक्ति हुई महाराज। कलयुग में एक निष्ठा की गोपी का प्रेम मीरा भाई ने दिखाया है, और दिखे नहीं ऐसा, तो उनकी निष्ठा एक ही है बस, मेरे तो इधर उधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो इधर गोपाल, उसके शरण होने पर मेरे भाई किसी महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, अमुक जगह जाएंगे वो मिलेगा वहां मिलेगा वहां मिलेगा, क्या जरूरत है, हम एक भगवान के ऐसे कोई संत ऐसा मिल जाए जैसे गांधी सगुण निर्गुण साकार निराकार सब ठीक हो तत्वों को जानने वाला ऐसा कोई मिल जाए तो फिर भटकने क्या जरूरत, पूर्ति नहीं हो जाना ही पड़ता है, हम भिक्षा को जावे हैं और एक दिन पूर्ति नहीं दो तीन चार पांच सात घर चले जावे, पर एक घंटे पूरी हो जाए, और मैंने तो ऐसे किया भी है ऐसे भी किया है, थोड़ा लिया है वहां से और घरों में जाना है ऐसे मैंने किया है, तो भिक्षा में मिले तो पेट पूर्ति हो जाए फिर क्यों जाए, अपनी पूर्ति हो जाए तो फिर जाने की जरूरत नहीं है, जहां संभावना है अगर पूर्ति है मैंने फिर नहीं छोड़ना है, और छोड़ोगे तो वो जल्दी सिद्धि नहीं होगी, परमात्मा में लगे रहोगे तो संसार की तरह नुकसान होगा नहीं, जिस संसार में लग जाए नुकसान होगा वैसा नहीं होगा, परंतु आपकी निष्ठा नहीं बैठेगी तत्काल काम से देनी होगी, तो माम एकम शरणम ब्रज, एकम पद माम में पड़ा हुआ है, माम शरणम ब्रज कहते थे ना, तो माम एक वचन है, तो एक एक शब्द तो माम के पेट में है, को दो दो की भूषण दो वचन एक की भूषण एक वचन बहुत की भूषण बहुत वचन, तो एक वचन में एक शब्द पड़ा है, फिर कहा भगवान एकम चेताने के लिए, नहीं तो माम कहने से एक तो मेरे पेट में है, माम शरणम ब्रज। नहीं माम एकम शरण भेजे अनन्य अन्य शरण नहीं आश्रय अन्य नहीं अन्य कोई ग्रंथक अन्य कोई संतक अन्य कोई महात्मा अन्य कोई कथा अन्य कोई सत्संग एक माम एकम शरण भेजे अनन्य शरण हो जाए तो सर्व पापी पाप मोक्ष पाप सब मुक्त कर दूंगा। माम और एकम नहीं होगा तो ये ठेका नहीं सब पाप में मुक्त कर दूंगा सबसे ठीक हो जाएगा। ये ठेका नहीं है, ये ठेका है अनन्यता में। वो अनन्य भाव है वह मेरा ताकत है विलक्षणता है वो पूर्ण होना ही पड़ेगा उसको। एक भगवती कथा थी भगवती बाई ही हुई भागवती बाई तो वह एक संत मान हमारे शरण हो गई। वो था ठग वैरी निष्ठा ही के महात्मा है संत है ऊंचे दर्जे का और कोई कामना नहीं हुआ और कोई लेनों को नहीं। भागवत भागवती थी भगवान को चाहने वाले तो वो ठगड़ी फेर में आ गई। तो ठीक है मैंने कहा कि चलते रहो तीर्थ करा ले मैं कमरा चलो सब गहना कपड़ा तो ले रहे साथ में सब ले लिया जंगल में जाए मैं तो सब छीन लिया एक कूड़ पटक दी पड़ गई। मेरी निष्ठा थी सच्ची कोई पटक थी वह भी बात आई कि कोई तो कोई मेरा हित होगा ये करना नहीं है वो आजकल का जमाना काम का नहीं है। मैं कह रहा हूँ करना मत कुएं मत पड़ जाना कटे मेरे मन में महाराज भाव दुर्भाव हुआ ही नहीं मेरे मन में तुम्हारा महाराज है भगवान ने वो निष्ठा देखी एक बार तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि देख मैं आ गया हूँ तुम क्या चाहती है कहते तो मैं तो महाराज गुरु जी को चाहती हूँ तुम आ जाओ मैं निकल मैं निकलना नहीं आपसे मेरे मतलब नहीं है मतलब तुम्हारे गुरु जी से। वह ठग को दर्शन देना पड़ेगा वो तो उद्धार हो गया। एक निष्ठे वाली एक लड़की ने गुरु जी को सुधार दिया किस भरोसे पर इस भरोसे पर एक निष्ठा पर तो ऐसी होनी कठिन पड़ती है। मैं पहले कई जगह एक निष्ठा सुगम है अपने ठीक है उस निष्ठा में रहो तो माम एकम शरणम एक भगवान की शरण हे नाथ हे प्रभु मैं आपका हूं इस पर निश्चिंत रहो। कल बताया था ना चिंता नहीं भय नहीं अलचल नहीं शंका नहीं शोक नहीं चार बात बताई थी है ही चार बात हो जाए ठीक तरह से आप एक पकड़े रहो ठीक तरह से काम ठीक हो जाएगा। एक कहानी आती है भेड़ बकरी बहुत चलती चलती चली गई एक बकरी लताओं के भीतर चली गई पत्ती खाने के लिए कत्ती पर निकलने की भेड़ बकरी निकल गई। अब वो निकलना चाहे तो निकल नहीं सकी ऐसी जाली आई हुई है किधर आई कैसे पता नहीं है इधर उधर भटकी नहीं निकल सकी। रात हो गई तो रात्रि में कुछ जगह मिली जो निकल गई वो अब निकल गई तो भेड़ बकरी तो गई रात है जंगल का मामला बकरी खा जाए शहरिया भी भेड़िया खा जाए नार खा जाए कोई खा जाए उसको तो एक सरोवर पास में गई सरोवर जाकर पानी पिया पानी पिया पानी पी कहाँ जाऊं मैं तो वहां एक सिंह पानी पीने के लिए आया था तो सिंह का पंजा टिका हुआ था खाते में मंडा हुआ वो उसके पास बैठ गई मैं तो ये मालिक है इनके शरण हूं मैं बैठ गई। रात्रि में लोमड़ी सड़िया जैसो कही आई जंतु पानी पीने को वो डरेगा मैं इनके शरण हूँ देखो हमारे ये है हमारे इन शरणों की शरण हूं मैं तो सब डरे भी सिंह एक तो सिंह का है सिंह सब डरे। सिंह आ गया उसे धमकाए के खा जाऊंगा कि मेरे इनके शरण है सर ये शरण है मैं शरणों का शरण दिया मैं तेरे का हूँ ये तो मेरा ही शरण है मेरा ही शरण है इनके आ गए इनके खा जाओ तो खा जाओ कुछ करो मैं तो इनके शरण हूँ मेरे शरण है तुम मेरे शरणों का आश्रय लिया है। सिंह बैठ गया आते आया पानी पीने के लिए आते आया तो गिरा हो गए इस बकरी को रखो एक बकरी उठाओ एक बकरी चढ़ गई सिंह बोले हाथी में ऊपर चढ़ा दिए सूंड से लेकर गए ऊपर चढ़ा लिए तो देखो इसको घरना ठीक तरह से नहीं देखो फिर मेरे जानते हो ना मार डालूंगा, डर गया तो ऊपर बैठ गया। छप्पर बजे तो काफी है, बैठो चाहे उठो कहीं करो, खूब बड़ी मौज बैठ रही भाई। तो खोज पकड़ ठाढ़े रहो, धनी मिलेंगे आज। अजया गज मस्तक शरीर निर्भय कूपल खाए, ऊपर की कूपल खाती, नीचे का पता नहीं, ऊपर कोमल कोमल कूपल खाती। ऊपर हाथी पर बैठी अब जा मगर में जाए वही खावे। तो खोज पकड़ सेठ रहो एकदम ठाढ़े रहो। तो अजया गज मस्तक शरीर निर्भय कूपल खाए, ऐसे एक दृष्ट होकर रखो, फिर भगवान रक्षा करते हैं। और भगवान जो प्रबंध करते हैं वो कोई मनुष्य कर नहीं सकता। क्या करेगा मनुष्य बेचारे, क्या करेगा मनुष्य, शक्ति कितनी है, जो शक्ति भगवान के सामने कुछ नहीं है। परंतु वो एक निष्ठ हो जाता तो भगवान, जैसे भागवती कथा बताई ना, ऐसे निष्ठा होने पर भगवान राजी हो जाते हैं, भगवान प्रकट हो जाते। इस वास्ते ऐसे तत्परता से लग जाओ सज्जनों, शरण हो जाओ भगवान, एक शरण होकर के एक निष्ठ हो जाओ, बड़ी शांति मिलेगी, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी ठीक बात है। तो सत्संग की मेरे शौक है, सुनने की भी है सुनाने की भी है, सुना दिया करते हैं। अब इसमें कोई बात पूछो, जो शंका हो भाई बहनों किसी की तो पूछो। जैसे इन्होंने पूछा ना तो उन्होंने सुबह के ऐसे पूछोगे तो बहुत बात खुलेगी, साफ हो जाएगी, शंका बढ़ जाएगी।
जब साधक से कोई भी खुश नहीं हो तो ऐसी हालत में साधक क्या करे?
भगवान को पुकारे, एक मिनट हो जाओ भगवान को पुकारो। अब कोई खुश नहीं, कहाँ तक खुश करोगे भाई, सब खुशी नहीं कर, सबको खुश कर नहीं सकता मनुष्य। एक मनुष्य सबको खुश कैसे करे, मेरे तो काम पड़ा है, इसी के स्वर्गाश्रम में व्याख्यान देना, कोई तो बात सुनाओ, कोई तो गीता सुनाओ, कोई कहते मायरा सुनाओ, मेरी बीती हुई बात बता दू बिल्कुल। तब मैंने कहा कि हाथ जोड़ कहता हूँ तुम एक और कह दो, बारी बारी तो सुना दूंगा, एक के साथ कैसे सुनाऊ, मायरा कैसे सुनाऊ, कैसे सत्संग सुनाऊ, कैसे गीता सुनाऊंगा, तो एक तुम एक होकर के कह दो और बारी बारी सुनो, तो बारी कह दो पहले ये कॉपी से ये कॉपी, वैसे कर दूंगा। नृत्य करता है ना नट, नाचता है तो नाचने पर बढ़िया स्वांग हुआ घटिया हुआ जो क्या है, इन श्रोताओं पर निर्भर, देखने वालों पर, वे सब वो जाए फिर ताली बजाओगे ये तो फिर आना चाहिए, तो फिर आना पड़ता है। इस तरह हमारे भगवान तो है सूत्रधर, आप हो सब दर्शक, आप राजी हो जाओगे तो हमारे ठाकुर जी राजी हो जाएंगे, समझे। इस बात में पूछता हूँ, बोलो भाई क्या सुनाओ, कथा मन में बस वही थारी बात हो गई सुना दे सर, नहीं बोले तो हमारी हुई बस, कुछ नहीं बोले तो भी हमारे पर ही आई, अरे थारे मंत्री कहे तो भी हमारे पर ही आई, अरे मैं पूछ ले तो मेरे बारे में, ऐसे मैं चलता हूँ, ये ठीक समझा दे, चलते हैं अपना, गलती हो जाए भी माफ कर देना सभी, पढ़ने से ठीक बात बैठती है। तो सब राजी करना चाहो तो ये गया भागवत में श्लोक, यथा तरोर मूल विशेषण तृप्यंति तस्कंद भुजोपशाखा, एक वृक्ष की जड़ में जल देने से वो बड़ा भाई तना और स्कंद और टहनिया, छोटे से टहनिया पत्ते पुष्प और फल तक को पहुंच जाता है सब तक, एक प्राणोपहार से जैसे इस अंदर जल दे दिया तो सब सही पहुंच जाता है। तथा सर्वार्थ मच्युत जिया, भगवान का पूजन करो सर्वार्थ सबका पूजन हो जाएगा, सबका छोटे बड़े सबका। तो ऐसी अवस्था में केवल भगवान में लग जाओ, उसका ही चिंतन, उसका ही जप, उसका ही ध्यान, उसमें तत्व लग जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर पहले नहीं होंगे राजी तो अंत में ठीक हो जाएगा। बोलो फिर बोलो, ठीक है बस लग जाओ, एक भगवान है उसी नाम का जप करो, उसी के स्वरूप का ध्यान करो, उसी में ही लग जाओ, उसी की बात सुनो, उसी का संग करो, कोई सुने तो अपन तो वही बात पूछो, उसी की बात एक निष्ठ हो जाओ। और बोलो
सात्विक भाव, हर समय सात्विक भाव रहने से हर चीज पकड़ में आती है बार बार ठीक बात।
और वो हर समय
सत्वगुण रहता नहीं,
ये एक सत्वगुण मुख्य है, निर्गुण हो जाएगा, असत्वगुण हो जाएगा। अपने देखो तमोगुण तो है पत्थर की तरह, और रजोगुण है वायु की तरह, और सतोगुण है निष्ठा में एक प्रकाश की तरह। तो सतोगुण ज्यादा रहेगा तो परमात्मा की वृत्ति रहने से उसकी सात्विक वृत्ति ज्यादा रहेगी, एक निष्ठा में सब आ जाएगा, इतना सब मिट जाएगा। एक आश्रो, एक पग, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, जैसे चातर के बदल की बूंद पीता है, ऐसे एक राम घन श्याम चातक सब ठीक हो जाएगा, रजोगुण तमोगुण सब मिट जाएगा, और सात्विक हो जाएगा, गुणातीत हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा गुणातीत है। भगवान के माम एभ्य परम अभ्ययम, मेरे शरण होते हैं, मैं पर हूं तीनों गुणों से, त्रिभुव गुण में भावी रे भी मोहित ना भी जाना थे, माम एभ्य परम अभ्ययम, ये मोहित तीन गुणों से मोहित होता है, और मैं इनसे परे हूं, अविनाशी हूं, मुझे अनन्य होने से मेरी प्राप्ति हो जाएगी। तो एक अनन्य निष्ठा है सब काम करती है, ये बात है। और बोलो, बोलते जाओ।
वो माया से मन छूट के भगवान में कैसे
लगे? एक निष्ठा बना लो, अपने भगवान में लगना है, मुंह और मैं आ जाए तो परवाह मत करो, अपने भगवानों को पकड़ो, खोज पकड़ सहते रहो, खोज पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया उस पर सहते रहो, धनी मिलेंगे आए, मुंह में सुन सुन जाएगा। अगर आप एक निष्ठा नहीं रहो तो फिर महाराज मारवाड़ी कहावत एक सुनियार बना पड़े एक मैं बोल रही हूँ, हरेक नहीं समझ सकता, हरेक समझ नहीं सकता इस भाषा को, इसमें तो ग्रामीण आदमी हो हमारे तरह का वो समझेगा। सुनिया तो एक सुनियार में नार पड़े, अब करो अर्थ उसका, अच्छा दूसरे बताओ है कि सूता नहीं भैंस तो पाडा ही जने समझते हो?
अरे
राम और कृष्ण और विष्णु तीन है इसमें नाम, इनमें एक के पीछे पड़ जाओ, चाहे विष्णु के पीछे पड़ जाओ, चाहे राम के पीछे पड़ जाओ, चाहे कृष्ण के, तीनों में से एक पकड़ो, एक का नाम है तीनों ही, हरि कृष्ण और राम, विष्णु के तीनों नाम है, कृष्ण के तीनों नाम है, राम जी के तीनों नाम है, इनमें एक पकड़ो आपको जो अच्छा लगे वो बढ़िया लगे वो। हाँ वो एक तो आप एक पकड़ लो, और फिर कोई अच्छी बात सुनो तो समझोगे, आपने एक राम जी को पकड़ लिया, और गीता सुनो तो कहते हमारे राम जी ही कहते हैं गीता में, हमारे राम जी बोलते हैं, अरे कृष्ण पकड़ा रामायण में भी हमारे राम जी, कृष्ण भगवान ही राम जी है हमारे, विष्णु भगवान ही राम जी है, भगवान विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही विष्णु है, वही है सब जगह, ये तीनों एक तीन चीज को एक तत्व एक ही है। पुराना नाम विष्णु है, वैष्णु फिर पीछा राम है, और पैसा आजकल का नाम है कृष्ण, समय पाकर तेरा नाम है उसी के। बोलो ठीक है, ये लग जाओ। नारायण 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 नारायण। और कोई है तो पूछ लो भाई। भगवान ने कहा पाप होता है संसार की इच्छा होने से, भगवान ने उत्तर दिया है, मैं पूरा समझा नहीं पहले तो अंत में कहा जो समझ में आई कि हम नहीं चाहते फिर भी पाप हो जाता है, ये प्रश्न पूछने समझा मैं,
उसमें बोले भगवान की कृपा काम आएगी।
हाँ काम तो आएगी, परंतु संसार की कामना है वो पाप करवाएगी, पाप कौन अर्थ के ना प्रयुक्त एवं पापम चलती अनिच्छन भी निश्चा तो पाप का क्यों करता है काम ऐसे क्रोध ऐसे संसार के संग्रह की भोग की इच्छा होगी वो पाप से बच सकता नहीं बात है। संसार की कोई इच्छा नहीं है तो पाप क्रिया होने पर भी पाप लगेगा नहीं। इससे नाहंक दो भाव तेरे बुद्धि जैसे न लिप्य थे ये लिप्तता है संसार में अच्छा पड़ा है ये चेप है ये नहीं लिप्य थे तो अब से मान लो का नहंती न निवेदित थे सबको मार देते मारता न पाप लगता है। ये पाप तो राग पर है आसक्ति पर है कामना पर है सब पटकी पड़े थे एक ऐसा ठीक हो जाएगा। और बोलो
ऐसा जी संतों की कृपा से भगवान प्रेम मिलता है तो ऐसा ऐसा कि जितने भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं आज तो आप जा ही रहे हैं ऐसी कृपा करके जा रहे भगवान करते
भाई हमारे में ऐसी कृपा नहीं है हमारे में ऐसी कृपा नहीं है पर आपकी कृपा लेनी हो तो एक मिनट हो जाओ ये बात है हमारे में कृपा नहीं है अब ऐसे समर्थ नहीं है भगवान के शरण हो जाओ एक निष्ठा आपकी होनी चाहिए फिर ठीक बन जाए। एक निष्ठा होने से अरे कह दिया कि इस स्तंभ में भगवान ने प्रसाद जी कह दिया तो सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम कह दिया ना किसने प्रहलाद ने तो भगवान ने सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषा अपने दास कह देता है करने से और व्याप्तिं भूते स्वखिले सुतात्मना सब जगह व्याप्त होने पर भी भगवान महाराज एक खंभे में पटर हो गए। प्रहलाद ने कह दिया खंभे में है तो हमारे खंभे में निकल गया सत्यम से है सत्यम विधातुम निर्भृत्य भाषितम व्याप्तिं भूते स्वखिले सुतात्मना एक नष्ट हो जाओ एक निष्ठा मैंने बहुत सी बड़ी ताकत माम एक कम शरण नंबर
निष्ठा महाराज
हमें एक साथ हे नाथ पुकारो एक साथ नहीं रहे एक नहीं रहे तो हे नाथ हे प्रभु हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ ये पुकारो कृपा कर रखो भरोसा और पुकारो एक भगवान को भरोसा कृपा पर पुकारना भगवान को ठीक आ जाएगा ठिकाना आ जाएगा पुकारते ही रहो। बच्चा रोता है ना तो बच्चा मूर्त नहीं देखता है इस समय में रोना सिद्ध होगा कि नहीं होगा ऐसा मूर्त नहीं देखता है ना यूं करता है कि पांच दस मिनट के लिए रोता हूँ आध घंटा के लिए रोता हूँ ऐसा नहीं होता है ना तो मूर्त देखता ना समय बांधता रोना शुरू कर दे मतलब माँ है माँ आ जाए तो रोना माँ बैठ गंदा ऐसे राम जी के लिए रोने लग जाए समय नहीं बांधना मूर्त नहीं देखना है कुछ नहीं देखना है माँ 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 वो तो माँ सुने कि नहीं सुने हमारी माँ तो सुनती है सब जगह सर्वतः श्रुति बल लोग है सब जगह कहानी हमारी माँ की नारायण 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 चलो भाई
हरे शरणम
मेरे मन में बात आई कि परमात्म तत्व की प्राप्ति उसकी प्राप्ति बहुत सुगम है। उसमें बात ये आई कि मुफ्त में चीज आती उगम लेते नहीं है इस रूप से याद आई आज ये समझ में नहीं आती है बातें कहने पर सुनने पर पढ़ने पर समझाने पर सुनाने पर भी समझ में नहीं आती है। एक बात ये समझ में आ जाइए मुफ्त में आती हुई को लेते नहीं है आज 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 बैठते ही ये बात समझ में आई। अच्छे पुरुष है और अच्छे नहीं तो माता पिता है गुरु है आचार्य है जिनको हम पूजनीय आदरणीय समझते हैं वे कहे उनकी प्रसन्नता ली जाए तो स्वतः तत्व आता है। संत महात्माओं के कहने के अनुसार अगर हम अपना जीवन बना दें वे कह जो हाँ मैं हाँ मैं जा दें सरल रीति से सीधी रीति से तो सत्य तत्व आता है स्वाभाविक स्वाभाविक आता है। माँ बाप चाहे परमात्मा प्राप्ति हुए न हो परंतु उनकी आज्ञा पालन करने वालों को परमात्मा प्राप्ति हो जाए ऐसी बात आती है समझ में। आज्ञा पालन करना है गुरु कहना करना है ये बहुत ही बड़ी विचित्र विद्या है क्योंकि बात को टाले नहीं तो उसमें एक शक्ति आती है विलक्षण शक्ति अलौकिक शक्ति आती है। जैसे रामायण में आया कि अनुचित उचित विचार तजी जे पालहिं पितु बहन ते भागी सुख सुजस के बस अमर पति है। तो स्वर्ग लोगों तक ही बताया उसने हमारे मन में आता मुक्ति तक अनुचित उचित विचार तजी से पाल उन्होंने कह दिया बस ठीक है लक्ष्मण जी ने कहा कि ये राजा के वचन नहीं है ये तो स्त्री के वचन है स्त्री के वशीभूत और का है ये उनका कहना नहीं है स्वास्थ्य बनवास जाने की कोई जरूरत नहीं है खास पिताजी का कहना है ही नहीं है और पिताजी का मानो तो पिताजी स्त्री के वशीभूत थे इस बार बाबर भूत विवश मतवारे ते नहीं बोले ही बदन संभारे वहां ऐसी कहा नहीं है। मैं कहता हूं एक बात तो विवश मतलब विवश होते हैं तो जब स्त्री के विवश हो जाएंगे तो उनका वचन वास्तव में ठिकाने का नहीं होगा इस बात से ठिकाने की थोड़ी ठिकाने के बाद मर जाते कैसे बिल्कुल उनके मन की बिल्कुल विपरीत उनके भी मन के बिल्कुल विपरीत सर्वथा विपरीत तो ये उनकी बात नहीं है। तो इसका उत्तर लक्ष्मण जी को दिया है भगवान ने बड़ा विचित्र दिया है कहते मैं आज्ञा पालक हूं मैं विचारक नहीं हूं। बड़ों की आज्ञा पालन करने में विचार करने का अधिकार नहीं है मेरे को विचार नहीं करता मैं कैसे कहा क्या कहा किसे कहा ये बात अध्यात्म में है तो वाल्मीकि में है ये देख लेना भाई मैं विचारक नहीं हूँ वाल्मीकि में है आपको याद नहीं होगा अध्यात्म होगा अध्यात्म बाद में कि मैं तुलसी से तो नहीं है मैं विचारक नहीं हूं ये बात साफ कही है अपना आज देखना है भाई बाद में होगा अनुमान से
हो सकता
है अध्यात्म है किसने बोला जी आपने तो अध्यात्म रमण है ऐसा अध्यात्म रामायण में बहुत बिगड़े है लक्ष्मण जी और बिगड़ कर कहा है कि ये वास्तव में पिताजी का कहना नहीं है स्त्री की बसी भूत और कहा है तो ये बहुत मान्य नहीं है। आप जब जाते हो रावण तो कौन किसकी ताकत है कि आपको राज्य छुड़ा दे मैं बैठा हूं राजगद्दी उठा नहीं सकता हम तो शस्त्र से धारण करते हैं ये श्रृंगार नहीं है हमारा श्रृंगार धारण कर जो नहीं है किस काम के लिए है ये इसी लिए है जो आ जाएगा उसको मैं सबको देख लूंगा राजगद्दी को मैं बैठाऊंगा कौन उठाने वाला है भरत आ जाए भरत का मामा युधाजित आ जाए तो उसको भी मैं नहीं छोड़ूंगा सबको ठीक कर दूंगा अच्छे से अकेला आपको राजगद्दी बैठाऊंगा कौन मना करता है ये बात सिर्फ अध्यात्म रामायण में है याद मेरे कम रहता है अध्यात्मी के बने कथा की है अध्यात्म रामायण पर कथाश में अध्यात्म रामायण पर करी है
ये बात जो कि लक्ष्मण जी की वाल्मीकि में भी आती है।
तो वाल्मीकि में ये मैं विचारक नहीं हूँ, ये बात याद नहीं है, मैं बात है ये आप देखना भाई, मैं विचारक नहीं हूँ, मैं आज्ञा पालक हूँ। और ये पते में पाव के पसे में समुद्र में कूद जाऊं, अग्नि में कूद सकता हूँ, सीता का परित्याग कर सकता हूँ, पर पिता के वचनों का त्याग नहीं कर सकता, पिता के त्याग करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है।
ये वाल्मीकि में
ये सब बताइए, अग्नि में कूद सकता हूँ मैं, समुद्र में कूद सकता हूँ, ये कुछ तो सामर्थ्य है, पर पिता के वचन का टालन करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है। किसी विचित्र बात यही है। तो ऐसे जो आज्ञा पालन करता है उसको मुफ्त में चीज मिलती है, बड़ी चीज है, अलग चीज मिलती है। ऐसे संत महात्मा मिलने कठिन है, पर तो अगर मिल जाए और उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बना ले तो मेरा पास है एकदम, और कुछ तो नहीं करना है, केवल उनके मन के अनुसार चलना है। जैसे धनी आदमी हो और उनके मन के अनुसार चले तो उसको धन मिलता है, विद्वान हो विद्वान की आज्ञा के अनुसार चले तो विद्या मिलती है, धनवान में उदार होता है तब मिलती है। पर तत्व की जीवन मुक्ति की आज्ञा में तो तत्व व्यवस्था ही है, वो अनुदान होता ही नहीं, कृपण होता ही नहीं, हो दिखने बुलंदी से कृपण नहीं होता, उदार असर भी थी। भगवान ने तो चारों ही भक्तों को उदार बसाया है, चारों आत्म जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी थे, उदारा सर्वे वैसे सर्वे एव उदारा, सबके सब उदार है। तो उदार है तो उनके पास की चीज मिलेगी, तो भगवत भक्त है उनकी आज्ञा के अनुसार ही चले तो आप सब तत्व मिलेगा, आप सब स्वतः। तो बड़ों की आज्ञा में, बड़ों के रुख में, उनके आदेश में, आदेश है, आज्ञा है, रुख है, इशारा है, संकेत है, ये उस आज्ञा के आमंत्र भेद है, उसके अनुसार चलने वालों को जरूर मिलता है। इशारा संकेत ये करे तो बहुत जल्दी काम होता है, आज्ञा स्थूल है, ये सूक्ष्म है, जितना सूक्ष्म गहरा उतरेगा उतना ही सूक्ष्म तत्व मिलेगा, मिलेगा ही। आज्ञा के बाद फिर शासन है, शासन के बाद फिर शाप है, वरदान है। ये संत महात्मा अपने नीचे उतरते हैं साधक के लिए, जैसा साधक होता है उस साधक के अनुसार उसको कहना पड़ता है, तो वो जितने दर्जे का उतने दर्जे उतर करके बात कहते हैं, तो अपने स्वरूप से उतर करते रहते हैं, श्राप तो दे देते हैं, ये सबसे नीचे उतरना श्राप देना है, श्राप दे देते हैं। जैसे नारद जी महाराज ने नलकूप मणिगिरी को श्राप दे दिया, तो उसमें भागवत तो कारण लिखा है, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत्कृतात्म नाम दर्शना नो भवेद बंध पुंसोक्ष्णो सवितुर यथा। किसी विलक्षण बात कही है, दर्शना नो भवेद बंध कैसे नहीं होता, पुंसोक्ष्णो सवितुर यथा। सूर्य भगवान को देखे तो आंखों में अंधेरा रह जाएगा, तो ये साप तक नहीं सद दिया तो उसमें भी कल्याण होगा। तो उनके साप में, उनके वरदान में, उनके शासन में, उनकी आज्ञा में, उसके उदाहरण में, उसके उसमें संकेत में, उसके सिद्धांत वर्णन में, इनमें सब में बात भरी हुई है आज्ञा पालन वाले तत्व की।
उदाहरण में
उदाहरण दिया कि ऐसे ऐसे संत महात्मा कहते हैं, ऐसे लोग किया करते हैं, ऐसे उदाहरण दिए ना। तो उदाहरण भी आज्ञा है वो भी, तुम भी करो, उदाहरण के द्वारा कहते हैं। संकेत उदाहरण कहते हैं, उस आदमी ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा कहते ऐसा किया, ये संकेत है।
इसका मतलब तुम भी ऐसा करो
है?
इसका तुम भी ऐसा करो,
हाँ तुम भी करो, ये आज्ञा के अंतर्गत है।
ठीक
सभी। और ऐसा है सिद्धांत बता दे, कैसे महात्मा कहते हैं वैसे लोग किया करते हैं, ये भी वो आज्ञा ही है, ये उनके। और जितना ऊंचे दर्जे का महात्मा होता है, ऊंचे दर्जे का इसी से होता है, तब ऊंचे दर्जे की बात होती है। तो संत महात्मा तो ऊंचे दर्जे का है ही, वो शिष्य ऊंचे दर्जे का नहीं हो तो तब उनको नीचे उतरना पड़ता है। संकेत है, उदाहरण है, दृष्टांत है, काय कायदा है, कानून है, एक रीति है, शास्त्र, ये सब बता देते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा बहुत कम कहते हैं। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, कम कहते हैं।
महाराज इसमें नीचा उतरना क्या हुआ?
नीचा उतरना ये है कि करो कहना है ना, ये नीचा उतरना ही है।
करो से पहले वाली जो बातें हैं, ऐसा किया करते हैं,
ऐसा उनमें ऊंचे दर्जे भी वो है, ऊंचे दर्जे भी वो है कि वो करते हैं, कुछ कहते कुछ भी नहीं, सबसे ऊंचे दर्जे की बात ये है, कहते नहीं, वो करते हैं। तो कुल करने से समझ जाएगी, इस तरह करना चाहिए हम लोगों को। यदि सहित प्रमाणम गुरु से लोग वर्तते, मानो वो करते हैं, वो करना ही उनका उपदेश देना है, वो कहते नहीं, संकेत नहीं करते, इशारा नहीं करते, केवल करते हैं, और करने में ही उपदेश बढ़ा हुआ। यदि श्रेष्ठ प्रमाणों को, ये दो नंबर की बात, प्रमाण कर देते हैं कि ये बात ऐसी शास्त्र की है, ऐसे करने से होता है, ठीक होता है, वो प्रमाण हो गया।
ये ऊंची स्थिति
है, ये नीचे दो नंबर की,
नहीं जैसे वो करते हैं कहते हैं कुछ नहीं, ये ऊंची स्थिति,
ये ऊंचा बात है।
फिर उसके बाद वो शिष्य पर कृपा करने के लिए नीचे उतरते,
नीचे उतरते हैं, दो नंबर बात है। ऐसे करते करते सिर्फ वरदान और साप तक देने में आ गए ना, तो साप देना सबसे नीची बात है, पर साप में ही कल्याण होता है। क्रोध हो से क्रोध हो भी देवस्य वरेण तुल्य, क्रोध भी जो वरदान के समान है, ये बात कही। क्यों क्रोध उनका अपने लिए तो होता ही नहीं, क्रोध दो तरह से आता है, एक तो हम बात करें हमारी भी नहीं मानता, हमारी बात नहीं मानता, ये क्रोध है एक तो, और ये इनका क्या दशा होगी, मानता नहीं है, ये हमको क्रोध आता है उनके ऊपर, तो वो क्रोध विलक्षण होता है, और हमारी बात नहीं मानता, ये क्रोध है, तो साधारण आदमी में क्रोध है, हमारी बात क्या माने, हमारी बात है ही नहीं। व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, बोध होने पर व्यक्तित्व नहीं रहता, और व्यक्तित्व रहता तब तक तत्व ज्ञान नहीं हुआ, व्यक्ति बना हुआ है। विश्वास से की हुए साधन से उस तत्व तक नहीं पहुंचता, फायदा होता है अनुभव से होते, करने से अलग शरणानंद जिसको मुख सत्संग कहते हैं, शेर जी जिसको अत्यंत ध्यान कहते थे, अत्यंत ध्यान, चिंतन नहीं उसमें, क्यों भगवान ने कहा है अत्यंत रूपम आदित्य वर्णम तमस पर, और आत्म संस्तु मना कर न किंचित भी चिंतित, किंचित भी न चिंतित, ये अचिंत्य ध्यान। उनके पत्रों में, पुराने पत्रों में सब सिस्टम का ही बहुत बात है, अचिंत ध्यान। तो अचिंत ध्यान में करना नहीं होता है, चिंतन भी करना नहीं होता है। शरणान जी मुख सत्संग से उसी में रहते, जिसमें कुछ नहीं है, अपने चुप साधन कहते हैं, वही कहते हैं, अचिंत ध्यान भी कहते हैं, मुख सत्संग भी कहते हैं, चुप साधन भी कहते हैं, वो उसी का ही नाम है, एक का ही। तो वो चुप साधन है, वो किया नहीं जाता है, वो किया नहीं जाता है, वो होता है। कार्य समाप्त होने के बाद में स्वतः आती है वो स्थिति, सौख्य आती है, वो पकड़ नहीं पाता मनुष्य, ये कोई विशेष ध्यान की बात है, पकड़ नहीं पाता। काम करते करते चुप हो जाए, जैसे चलते चलते आदमी बैठ जाता है, बंदरी चलता है साथ बैठता है, ऐसे हरेक क्रिया करते बीच में विश्राम आता है, वो विश्राम में वो चुप साधन है, अचिंत ध्यान है। कोई काम करते हुए फुरना करते हुए बीच में आता है। शंकराचार्य महाराज ने लघु वाक्य वृत्ति एक ग्रंथ है, उसमें ये लिखा है, छोटा सा है, असर 20 लोग है, संख्या याद नहीं है, ऐसे ग्रंथ में लिखा है। तो उसमें ये लिखा है कि पहला विकल्प तो समाप्त हुआ और दूसरा विकल्प है उदय नहीं हुआ, उसके बीच है ब्रह्म तन निर्विकल्पकम, वहां निर्विकल्प ब्रह्म है एकदम। तो पहला संकल्प समाप्त हो गया, दूसरी पूर्णा पैदा हुई, उन संधि संधि में है। इसको संत ने यूं कहा है कि सब वृत्ति है गोपी का साक्षी कृष्ण स्वरूप, संधि में झलकत रहे यह है रास अनूप। ये बताया दोनों वृत्तियों के बीच में जो संधि में, ये सच्चिदानंद घन खास कृष्ण है, सब वृत्ति गोपी का है, और संधि में बीच में कृष्ण, ये कृष्ण है, द्वयो मध्य द्वयो द्वयो आधा, दो दो के बीच में कृष्ण है। तो वो संधि में झलकत रहे यह रास अनूप, तो संधि का क्षण है वो पकड़ना है। तो एक द्वितीय क्षण विकल्पस्य निरोधनम क्रमेण अभ्यस्तता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, ऐसा लिखा शंकराचार्य नहीं, अभ्यस्तता आगे अभी इसमें अभ्यास नहीं है, इसमें अभ्यास नहीं है, उनके अभ्यास में दिया है शंकराचार्य, उन्होंने अभ्यास माना है, अभ्यास माना है इसको, उनकी दृष्टि में अभ्यास है। वो पहले का संकल्प समाप्त हुआ, दूसरा संकल्प उदय हुआ, उसके बीच में एक द्वितीय क्षण एवं विकल्प से निरोधनम, ऐसे जो विकल्प का निरोधन है, क्रमेण अभ्यस्तता नित्यम ब्रह्मानुभव कांक्षी भी, जो ब्रह्मानुभव करना चाहता है उनके लिए ये अभ्यास करना चाहिए। तो ये अभ्यास नहीं है, अभ्यास में फिर वृत्ति की सजगता होती है, सहकारिता होती है, सत्ता होती है वृत्ति की, अभ्यास नहीं है, केवल लक्ष्य है। जैसे कहा ना संकेत है, लक्ष्य है। संत महात्मा उदाहरण देते हैं, किसी की बात कह देते हैं, शास्त्र की बात कह देते हैं, यूं है, तुम करो, ऐसा नहीं है, करने में अभ्यास आता है। तो ऐसे अचानक वृत्ति वैसी होती है, उस अचानक वृत्ति में वो आप सभी वृत्ति की वृत्ति रहित होता है। वो देखो सिद्धांत है एक कि प्रकृति है वो क्षण परिणामी है, निरंतर परिवर्तन होता है, निरंतर। तो परिवर्तन होता है तो परिवर्तन पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो उनकी संधि भी होती है, आदि और अंत होता है। कोई भी क्रिया करो उसका आदि और अंत होगा। बोलता है तो आदि और अंत होता है, बोलने में वाक्य का आदि और अंत होता है, वाक्य में शब्द का आदि और अंत होता है, शब्द में अक्षरों का आदि और अंत होता है। एक एक उच्चारण के बाद दूसरा, तो उनकी संधि होती है अक्षर के बाद अक्षर, ऐसे शब्द के बाद शब्द, फिर वाक्य के बाद वाक्य। क्या बात है भैया? तो अक्षर के बाद भी अक्षर होता है, तो और उच्चारण में संधि होती है, एक हुआ फिर दूसरा हुआ, ऐसे। तो उसमें ब्रह्म तन्य विकल्प ऐसे उसी में आया, वाक्य वृत्ति में आया। मानो प्रकृति संसार सविकल्प हो, सविकल्प है, ब्रह्म तन्य विकल्प हो, इसमें बताया।
वो शंकराचार्य जी ने अभ्यास के लिए कहा, वैसे मतलब आप भी तो कभी के थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहा,
मैं भी कहता हूँ,
तो उसमें ये अभ्यास नहीं है क्या?
अभ्यास ही है, अभ्यास से पहली अवस्था है। अभ्यास में तो बार बार है ना, तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, स्थिति में होने के लिए यत्न करने का नाम अभ्यास है। मैं यत्न रहित कहता हूँ,
थोड़ी थोड़ी देर में चुप रहो।
हाँ तो चुप थोड़ी देर में कुछ मत करो, कुछ करो, अभ्यास होता है। तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न करने का अभ्यास है। तो प्रयत्न
चुप रहने के लिए जो थोड़ी थोड़ी देर में यत्न करते
हैं, ये भी अभ्यास है, अभ्यास का अंश है, पर लक्ष्य अभ्यास का नहीं है। थोड़ी थोड़ी चुप रहा करो तो अभ्यास हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी निर्विकल्प चुप होना है। तो चुप है स्थिति, चुप चुप दो चीज होती है, चुप होना एक तो, एक चुप ही है स्वाभाविक, वो है कि तब लक्ष्य है मेरा। जैसे अभी कहना अक्षर के बाद अक्षर है, शब्द के बाद शब्द है, वाक्य के बाद वाक्य है,
है उसमें स्थित नहीं होते हम।
हाँ
चुप्पी तो है ही,
है ही, वो तो है ही, वो तो आगे गई। मैंने दृष्टांत दिया है, जैसे दो रावते हिंड होती है ना, तो हिंड समता में आवेगी, समता गायब जाएगी नहीं, जाएगी नहीं, समता गायब बिना जा ही नहीं सकती, ऐसे समता आए बिना वाक्य हो ही नहीं सकता। वो समता है, वो योग है, समतम योग उच्च थे, वही परमात्मा का स्वरूप है, वो तो आ गई। एक दिन में कोई सैकड़ों आ जाती है, सोचे
तो एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया बीच में तो आता ही
हो, आता ही आवे ही नहीं। तो अब अक्षर के बाद अक्षर, वाक्य के बाद शब्द के बाद शब्द,
का सिद्धांत भी है ये।
हाँ।
पूर्व पूर्व वर्ण के उच्चारण करने पर,
हाँ,
दूसरे वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो पूर्व वर्ण विध्वंस हो जाता है,
हाँ,
और फिर उन सब का अर्थ ही उसके वहाँ प्रस्फुटित होता है,
हाँ,
और अर्थ को स्फोट बोलते हैं,
हाँ, स्फोट,
हाँ जी,
स्फुट हुआ उसका स्फोट होता है,
क्योंकि अक्षर तो उत्पन्न और नष्ट हो गया,
हाँ,
घट बोल जाने से घकार अकार टका और अकार चारों अक्षर घ और ट, घ बोलते ही घकार अकार चले गए, और ट बोलते टकार अकार बोले वो टकार अकार भी चले गए, तो उससे कम्बुग्रीवादी मत्व जो एक पदार्थ है, उस पदार्थ का जो ज्ञान है ये वास्तव में स्फोट है। तो जितने भी अर्थ है वो स्फुटित ही होते हैं, अक्षरों के अक्षर तो केवल उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक अक्षर बोलते हैं तो दूसरा अक्षर बोलते हैं तो बीच में वो पैर ही खत्म हो गए, और वो जो बीच का काल है उसमें से वो अर्थ स्फुटित होता रहता है।
बहुत गहरी बात है, स्फोट मैंने सुना है, स्फोट का इतना स्पष्ट आपने कहा जैसे सुना नहीं मैंने। स्फोट होता है जिस तरह से बम होता है, बम बम पड़ता है, इस तरह से शब्द का अर्थ पड़ता है बम की तरह, तो उसको स्फोट कहते हैं, विस्फोट हो गया, तो विस्फोट है जो शब्द का स्फोट है। तो ऐसा मैं समझ रखा है सुना, परंतु आज आपने बहुत साफ कर दिया, अच्छा साफ सुनाया। और ये अक्षर है ना, घट घाट जो अक्षर है, ये अक्षर हुए तो अक्षर नष्ट नहीं होते थे, लोप होता है, नष्ट नहीं है, अक्षर नाम है। वैयाकरणों के अक्षर अविनाशी होते हैं, अक्षर उच्चारण से पहले उच्चरा गया नष्ट हो गया ऐसा नहीं है।
उस काल के लिए,
उस काल के लिए लोप होता है, इसको आदर्श नाम लोप, लोप कहना उसमें चाहिए, नष्ट नहीं करना है तो नष्ट भी आदर्श नहीं है, नष्ट आदि भी आदर्श नहीं है।
लोप ज्यादा उपयुक्त है, उनके सिद्धांत से ज्यादा उपयुक्त।
अब लुकुर स्लूर लुप लुमता है, लुमतांग से न लुमतांग से लुमत है, तो लुमत है मतु प्रत्यय लुमान, जिनमें लू होता है उसका नाम लुमान होता है, तो लुमतांग से लुमत लुमान लुमान तो लुमंत लुमंतम लुमंतुम लुमत 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 लू है, इसमें लुमान है ये न लुमतांग से लुमता से लू है, लूमत से लू है, उसे अहंकार ही नहीं होता, लोक से हो जाएगा, लोक से स्थानीय स्वभाव हो जाएगा, तो लुमता से नहीं होगा। नारायण 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 नारायण
जो स्वाभाविक जो चुप्पी है,
हाँ,
आपका लक्ष्य है कि थोड़ी थोड़ी देर में स्थित हो, स्वाभाविक चुप्पी में स्थित रहो,
स्वाभाविक स्थिति में।
और वो जो कहे बार बार अभ्यास किया जाता है, उसमें वृत्तियों को लेकर के चुप रहने की बात कहते हैं।
हाँ, ये फर्क है, बात वही है।
अरे नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, दस दिस राखे लखिलाओ थे मन चायो जी, जते दिस राखे लखिलाओ थे मन चायो जी, नाथ थारे शरण आयो जियो, नाथ थारे शरण आयो जी, जते दिस राखे लखिलाओ थे मन थायो जी, बोझो सभी उतरो मन को दुख बिन सायो जी, तेंता मिटी बड़े चरणा को सारो पायो जी, चिंता मिटी बड़े चरणा को सारो पायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, जते जिस राखे लखिलाओ थे मन चायो जी, जते जिस राखे लखिलाओ थे मन चायो, सोच फिकर अब सारो थारे ऊपर आयो जी, सोच फिकर सब सारो थारे ऊपर आयो जी, पर मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर खायो जी, मैं तो अब निश्चिंत हुयो अंतर हर कायो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, नाथ थारे शरण आयो जी, जते जिस तरा खेल खिलाओ जस अप जस सब थारो, मैं तो दास कुहायो जी रे, जस अप जस सब थारो, मैं तो दास कुहायो जी, मन भावरो थारे चरण कमल में जा लिपतायो जी, मन भावरो थारे चरण कमल में जा लिपतायो जी, नाथ थार शरणे आयो दीनाथ
थार शरणे आयो दी
जसे जिस तरह खेल खिलाओ थे मन
तार